सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय रामचंद्र की जय। संसार के वहां दो मार्ग जो है दोनों उत्तम है, एक ज्ञान को मार्ग और एक भक्ति को मार्ग। जो आदमी ज्ञान के मार्ग में चले है और भक्ति के मार्ग की निंदा करे है तो वह भक्ति के तत्व रहस्य को नहीं समझी, और जो आदमी भक्ति के मार्ग पर चले और ज्ञान के मार्ग की निंदा करे तो वह ज्ञान के तत्व को नहीं समझी। ये सिद्धांत है। यदि कहो कि ऐसा देखने में तो आता है कि जो अद्वैत मार्ग के अनुसार माने समझो कि वेदांत के सिद्धांत के अनुसार अद्वैत मार्ग का साधन करता है और अद्वैत मार्ग का प्रचारक है वह एक भक्ति मार्ग की निंदा करता है, और जो भक्ति मार्ग के ऊपर चलता है वह जो निर्गुण निराकार का जो समझो कि अद्वैतवाद है वेदांत का सिद्धांत है उसे को हे बतलाता है नीचा बतलाता है। तो ये समझना चाहिए कि वह दोनों ही वास्तु के मां परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, क्योंकि किसी भी भगवान के स्वरूप की निंदा करो चाहे निर्गुण निराकार की करो और चाहे सगुण साकार की करो है तो वो परमात्मा की ही निंदा। जब परमात्मा के तत्व को जानने वाला पुरुष भला परमात्मा की निंदा कैसे कर सकता है, ये आपको एक हमने रहस्य की बात बताई। दोनों ही मार्ग है और दोनों का फल एक है। हमको तो दोनों ही मार्ग बड़े उत्तम लगते हैं, कोई किसी भी मार्ग से क्यों नहीं चले, परमात्मा की प्राप्ति उनको हो जाती है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप की जो आदमी निंदा करता है तो वो परमात्मा की निंदा करता है, तो वो परमात्मा को कैसे प्राप्त हो सकता है। भक्ति के मार्ग में तो प्रेम प्रधान है प्रेम, और ज्ञान के मार्ग के बीच के मां जो है ज्ञान तो प्रधान है ही, किंतु वह ज्ञान होता है देहाभिमान के त्याग से। देहाभिमान से रही थोड़े से वो ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। देह के बीच के मां जो आत्मबुद्धि है ये अज्ञान है, और ये बात प्रत्यक्ष है कि आत्मा तो चेतन है और देह तो जड़ है, और दोनों की एकता कभी हो ही नहीं सकती। भला दिन और रात कभी एक हो सकते हैं, इसी प्रकार से जड़ और चेतन एक नहीं हो सकते। भ्रम से अज्ञान से एक से दिखते हैं, जैसे किसी को दिख भ्रम हो जाता है तो उसको पूर्व अपने पश्चिम दिखता है, किंतु पूर्व तो पूर्व ही रहता है पश्चिम पश्चिम ही रहता है। ये नहीं कि कभी पूर्व ऐसो पश्चिम हो जाए या पश्चिम ऐसो पूर्व हो जाए, तो ये अविद्या है ज्ञान है कि देह के भीतर के मां जो आत्म बुद्धि है कि देह मैं हूं या देह मेरा है, ये दोनों ही प्रकार का अज्ञान है। और ये भी अज्ञान है कि जो मां अपवित्र जो देह है जिसके बीच के मां समझो कि देह के मां खराब ही खराब चीज भरी हुई है, हाड़ मांस रुधिर मज्जा मलमूत्र ऐसी अपवित्र देह को और जो पवित्र मानता है ये भी अविद्या है। और देह जो अनित्य नाशवान है किसी भी प्रकार कायम रहने की चीज नहीं, उस देह को जो नित्य मानता है वह भी मूर्ख है। और संसारिक जो भोग है, संसारिक जो सुख है, यह है तो दुख है, और इसको इसमें जो सुख बुद्धि है यह भी मूर्खता है। तो सभी प्रकार की मूर्खता जो है अज्ञान से है, और ज्ञान होने से सबका नाश हो जाता है। तो इसलिए एक प्रकार से थी ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, परमात्मा के ज्ञान होने से थी ये सब भ्रम मिट जाते। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि महापुरुषों के पास में जाओ और जाकर करके के उसे ज्ञान को समझ लो, और ये चेतावनी दी है उपनिषदों के मां कि उठो जागो और सावधान हो, और महापुरुषों के पास में जाकर के उस परमात्मा के स्वरूप को समझ लो। इसी भाव को गीता कहते है कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेविया उपदेश संति ते ज्ञान ज्ञानी न स्वतदर्शी न। तत् विद्धि माने उस ज्ञान को, विधि माने तू जान। भगवान कहते अर्जुन को गीता की चौथी अध्याय के 34 के श्लोक में कि तत् माने उस ज्ञान को, विधि माने जान। किस प्रकार से जानू कि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने ने सेविया, प्रणिपात माने साष्टांग नमस्कार करके प्रणाम करके, किनको कि महापुरुषों, और परिप्रश्ने ने माने निष्कपट भाव से प्रश्न उत्तर करके, श्रद्धा से जिज्ञासा से प्रश्न उत्तर करके, और सेविया उनकी सेवा कर करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। वे तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे को ज्ञान का उपदेश करें। और यद ज्ञातवा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव, यद ज्ञातवा जिस ज्ञान को तू जान करके फिर मोह को, इस प्रकार से मोह को कभी प्राप्त नहीं होगा जैसा तू इस समय में मोहित हो रहा है, फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। और ये न भूतान शेषे न दृक्षसी और आत्मनि अथोमयी, ये फिर उस समझो कि उस ज्ञान के द्वारा सारे भूतों में तुम अपनी आत्मा का दर्शन करेगा, सब में तुम्हारे को अपनी आत्मा दिखेगी। जैसे देह मात्र में आत्मा दिखती है, जब तुम महात्मा हो जाओगे तो सारे संसार में तुम्हारे को आत्मा दिखेगी, तुम जब महान आत्मा हो जाओगे। और उसके बाद के बीच के वहां उस तुम्हारी आत्मा का दर्शन होकर के और फिर मुझ परमात्मा को देखोगे, तो सारे ब्रह्मांड के बीच के मां आत्मा का दर्शन, जैसे देह के बीच के मां आत्मा का दर्शन है, ऐसे ब्रह्मांड में आत्मा का दर्शन। इस प्रकार से सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युगतात्मा सर्वत्र समदर्शन। भगवान गीता की 6 अध्याय के 29 के श्लोक में कहते हैं कि योग युगतात्मा पुरुष, योग माने ब्रह्म, उस ब्रह्म के स्वरूप के बीच में जिनकी आत्मा युक्त है, माने ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति है, सच्चिदान घन जो ब्रह्म, और उसमें जो एक ही भाव से स्थित हो गया है, यानी अपने को ब्रह्म रूप देखता है, साक्षात समझो कि जो ब्रह्म ही बन गया है, ब्रह्म के स्वरूप के बीच के मां एक ही भाव से जो स्थित हो गया, ऐसा पुरुष सब जगह के मां आत्मा को समभाव से देखता है। सर्वभूतस्म आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि, आत्मा को सारे भूतों के मां समभाव से देखता है, क्योंकि ब्रह्म जो है परमात्मा वो सब भूतों के मां समान भाव से व्यापक है। और वो खुद जब ब्रह्म रूप बन जाता है, ब्रह्म तन्मय हो जाता है, तो फिर वो जैसे अज्ञानी आदमी देह के महात्मा को देखे, वो सारे ब्रह्मांड के महात्मा को देखता है, ये सारा ब्रह्मांड उसका शरीर हो जाता है, और आत्मा को अपने आप को जो है सो सारे ब्रह्मांड के बीच के मां देखता है, सारे भूत प्राणी की आत्मा को अपनी आत्मा ही देखता है कि सब मेरी आत्मा है, सबकी आत्मा ही मेरी आत्मा, ऐसे उसको प्रतीत होती है प्रत्यक्ष के बीच के मां। ये साधन करने से ज्ञान का साधन, ज्ञान मार्ग का साधन, जब ये मनुष्य साधन करता है तो बहुत ही एक आनंद और आश्चर्य होता है। जब सारी जगह आत्मा का अनुभव हो जाता है तो ये शरीर चलता है तो यूं प्रतीत होता है कि ये शरीर भी मेरे आत्मा पर चलता है, पृथ्वी में भी आत्मा देखता है, वो तो सब में आत्मा देखता है। तो ये शरीर जो है ये जब पृथ्वी पर चलता है तो यूं प्रतीत होता है कि मेरी आत्मा पर ये चल रहा है। और ऐसे ही आत्मा के बीच में सारे भूतों को देखता है कि मेरी जो आत्मा अनंत है, उस अनंत आत्मा के मां सारे प्राणी मेरे संकल्प के मां है, ऐसा अनुभव करता है। तो ऐसा अनुभव बड़ा एक आनंद का विषय, ज्ञान का विषय है। जब मनुष्य ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उस वक्त के मां समझो कि ऐसी प्रतीति होती है कि मानो मैं ब्रह्म हूं और अनंत ऐसा ब्रह्म बन करके सारे ब्रह्मांड को और सारे ब्रह्मांड के मां रहने वाले मनुष्यों को वो अपने आत्मा के अंदर समझो कि आत्मा के संकल्प के अंदर देखता है। और आपका कोई था ही नहीं, आप तो इतना अनंत हो जाता है कि आकाश को भी अपने अंतर ही देखता है, आपके भीतर ही देखता है, इतना बड़ा बन जाता है ये सारा ब्रह्मांड, जो आकाश सहित सारा ब्रह्मांड को वो आत्मा के मां देखता है और सारे ब्रह्मांड के बीच के मां अपने आत्मा को देखता है। जैसे आकाश है बहुत से बादल है तो आकाश तो जड़ है किंतु थोड़ी बार के वास्ते मान लो यदि आकाश चेतन हुए तो सारे बादलों के समूह को आकाश आपके एक अंश में अनुभव करेगा कि सारे बादल मेरे एक अंश में है। और बादलों के वहां आकाश एकदम व्यापक है और जब बादल मिट जाएंगे तब आकाश ही रह जाएगा। इस प्रकार से थी वो एक उसे सत्चितान घन ब्रह्म ही बन जाता है और सारे ब्रह्मांड को जो है और सारे प्राणियों को आपके मां देखता है। आनंदमय आनंदमय आनंदमय, जो कैसा आनंद हो रहा है, कैसी शांति हो रही है, आहा, एक आनंद के साथ दूसरी वस्तु है ही नहीं। आनंद जो है वो ही उस आत्मा का स्वरूप है। तो सर्वभूतस्म आत्मानं और सर्वभूतानि च आत्मनि और ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन है, सर्वत्र समदर्शन है, सर्व जगह के मां समान भाव से देखने वाला योग युक्त आत्मा पुरुष ब्रह्म के मां जिनकी आत्मा युक्त है, जो ब्रह्म भूत है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म को ही अपनी आत्मा अनुभव करता है कि ब्रह्म ही मेरी आत्मा है, ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है। जब ऐसा मनुष्य जब ब्रह्म बन जाता है, परमात्मा बन जाता है, तो परमात्मा बन करके देखता है तो सारा ब्रह्मांड उसे अपने परमात्मा के स्वरूप के एक अंश में संकल्प मात्र से दिखता है कि हाँ कि मैं तो अनंत हूँ, मेरी तो कोई सीमा ही नहीं, और ये सारा ब्रह्मांड तो मेरे एक अंश मात्र के वहां है। और अपने और सारे ब्रह्मांड में आत्मा को देखता है। जैसे आकाश जो है वो सारे बादलों के समूह को अपने एक अंश में देखता है और बादलों के मां आकाश एकदम अपने आप को व्यापक देखता है। ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहां आकाश न हो, तो ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहां उसकी आत्मा न हो, अरे आत्मा के अंदर सारे ब्रह्मांड को देखता है। ये उच्च कोटि का जो ज्ञानी है, एक प्रकार से साधक ज्ञानी, वह साधक ज्ञानी की स्थिति है, ज्ञान के मार्ग में चलने वाले साधक की स्थिति है। इसी प्रकार से थी भक्ति के मार्ग में चलने वाले की आपको स्थिति बतलाता हूं। वही सच्चिदानंद ब्रह्म जब एक प्रकार से थी सगुण साकार के रूप में आ जाते हैं ना, जैसे जड़ जो है आकाश में निराकार रूप में रहता है, वो बादल बनता है, फिर बूंदे के रूप में बरसता है, फिर बर्फ के रूप में बरसता है, फिर बर्फ का सा ढीला हो जाता है, तो है तो वो निराकार और बन गया साकार। ऐसे ही परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, सो निराकार है, सत्चिदानंद घन ब्रह्म निराकार, सब जगह आनंद के रूप में विराजमान हो रहा है, ये सब जगह जो आनंद अनुभव है ये ब्रह्म का स्वरूप है, और ब्रह्म एक आनंद के रूप में, चेतन के रूप में, ज्ञान के रूप में और समता के रूप में, शांति के रूप में, एकदम प्रत्यक्ष के मापक सदा सर्वदा सब जगह के बीच के माँ है। जो ब्रह्म के माँ स्थित होकर ब्रह्म का ध्यान करते हैं उनको एकदम वो प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है कि उसके समान और कोई चीज प्रत्यक्ष है ही नहीं। वही जो ब्रह्म जो परमात्मा समझो कि महान प्रकाश के रूप में परिणित होकर के और फिर उस प्रकाश का एक समझो कि पुंज हो जाता है तो वो भगवान का विग्रह होकर के दिखता है। जैसे आकाश के माँ पूर्णिमा का जो चंद्रमा है उस चंद्रमा का जो मंडल है, चंद्रमा का जो बिंब, वो एक प्रकार से समझो कि एक स्थान में दिखता है, और उसकी जो चांदनी उनका जो प्रकाश है वो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ दिखता है। तो इसी प्रकार से भगवान का प्रकाश तो सारी दुनिया के बीच के माँ समान भाव से फैला हुआ, और भगवान का स्वरूप जो आकाश के माँ सो मौजूद है, भगवान के साथ में अपना प्रेम का संबंध है, या यूं समझो कि प्रभु हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, या यूं समझो कि भगवान हमारे मित्र। भगवान के साथ में मनुष्य जो नाता जोड़ता है, भगवान के साथ में जो नाता आपने मानता है भगवान उसके साथ में उसी प्रकार मानते हैं। तो अर्जुन का भगवान के साथ में दो संबंध था पारमार्थिक। दो संबंध क्या था पारमार्थिक? एक तो यह था कि अर्जुन जो है सो भगवान का सखा था और प्रेमी था। भगवान स्वयं कह गीता में कि भक्तोसी में सखा चेती, अर्जुन तू मेरो भक्त भी है और मेरो सखा भी है। तो ये दोनों ही संबंध बहुत प्यारा है। और दो लौकिक संबंध भगवान का अलग था। भाई ये था कि भगवान जो है सो अर्जुन का सारा लगे था, और दूसरों लौकिक संबंध हो कि बुआ का बेटा भाई भी लगा। तो ये तो संसारिक संबंध। कुंती जो उसकी माँ अर्जुन की, वो कृष्ण जी की बुआ थी, तो एक प्रकार से थी तो अर्जुन बुआ का बेटा भाई हुआ, और कृष्ण से उसके मामे का बेटा भाई हुआ। और दूसरा उस बलदेव जी की बहन जो सुभद्रा, उसके साथ में अर्जुन ने ब्याह कर लिया था, इस वास्ते समझो कि वो साला हो गया। तो ये तो लौकिक संबंध, और वो प्रेम का संबंध था। जैसे एक तो होता संसारिक संबंध और एक होता प्रेम का संबंध। उदाहरण के लिए जैसे घनश्याम है, तो घनश्याम लौकिक संबंध से थी समझो कि हमारा सगा लगता है, और पारमार्थिक संबंध से थी हमारा मित्र है। तो इसी प्रकार से थी एक तो संसारिक संबंध होता है और एक समझो कि आपने अध्यात्म विषय का संबंध होता। तो अध्यात्म विषय का जो संबंध है वो जोरदार है। तो अपने सबको इस अध्यात्म विषय को जो संबंध है ना वो ही रखना चाहिए। तो भगवान के साथ के बीच के वहां ये दो संबंध जो है तो बहुत उत्तम है कि भगवान के साथ में एक तो सख्य भाव और एक जो है सो आपने स्वामी भाव, माने भगवान हमारे सखा और भगवान हमारे स्वामी, भगवान हमारे। तो हमारे कहने से अपनता आती है उसमें कि हमारे भगवान। तो इसी प्रकार से थी अपने ये दोस्त जो संबंध है बहुत ही उत्तम संबंध है। तो भगवान के साथ में स्त्रियां भी ये दोस्त संबंध रख सकती है। एक तो भगवान के साथ में ये कि भगवान सखा, गोपियां जो थी सो भगवान की सखी थी, तो इस वास्ते वो एक तो ये संबंध था भगवान के साथ में कि भगवान हमारा सखा है, और एक ये संबंध एक प्रकार से थी कि भगवान स्वामी और वो दासी, माने एक प्रकार से भगवान को अपना स्वामी मानना और भगवान को अपना सखा मानना। और भगवान भी ऐसा ही मानते कि भी वो अपने सखी भी समझते और अपने दासी भी समझते। और पुरुषों का भगवान के साथ में जैसे अर्जुन का जो संबंध है, ये बड़ा प्यारा संबंध है। हमको तो ये बड़ा अच्छा लगता है भगवान के साथ में, कि भगवान हमारा सखा, भगवान हमारा स्वामी, स्वामी और सखा, ये जो भाव है बहुत ही प्यारा भाव है। तो समझो कि एक प्रकार से अपने भगवान से अपने रोज जो है सो प्रेम से अपने मानसिक भगवान के साथ में रोज मिलना चाहिए। हम तो भगवान का रोज ध्यान करते हैं एक प्रकार से मन से, साक्षात शरीर से मिलना तो अपने बस की बात नहीं, उसका काम है, और मन से मिलना अपना काम, ये अपने बस की बात है। तो मन से थी ऐसा कि मानो रोज एक प्रकार से भगवान का आह्वान करना, तो भगवान का आह्वान अपने भगवान का नाम उच्चारण करने से ही भगवान आ जाते, ऐसा मन के मां विश्वास करना चाहिए कि जब भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है, किसी का भी नाम उच्चारण करो, उस आदमी के कानों में बात पड़ जाती है तो आ जाता है। और भगवान के कान तो सब जगह है, और भगवान तो जो कुछ एक प्रकार से हम लोग कर रहे हैं सब देख रहे हैं, भगवान से तो कोई बात भी छिपी हुई नहीं है। तो भगवान के साथ के मां अपने खूब प्रेम बढ़ाना चाहिए। जब खूब प्रेम बढ़ जाता है तो भगवान चाहे कहीं रहो उसके हृदय में ही बात करते हैं। जब इसी के विषय में आप समझो कि आपका और हमारा प्रेम है, तो आप समझो कि कोसों दूर बसते हो तो भी हमारे पास में ही हो, चाहे आप समझो बंबई और कलकत्ता क्यों नहीं बात करो, जब आपके साथ में हमारा प्रेम है तो आप हमारे पास ही हो। और यदि आपके साथ हमारा प्रेम नहीं है तो चाहे यहाँ ही बैठे रहो, नजदीक हो क्योंकि आप दूर ही हो। तो प्रेम एक चीज है, तो इस वास्ते भगवान के साथ में यदि हमारा प्रेम है तो चाहे भगवान बैकुंठ में है तो भी अपने पास बैठे, और यदि हमारा भगवान में प्रेम नहीं है तो समझो कि पास रहकर के भी दूर है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था उस समय समझो कि अपने भगवान युद्ध के माई थे, और दुर्योधन करण आदि से भेंट होती रहती थी, किंतु उनका प्रेम नहीं था, इस कारण से भगवान उसके नजदीक रह करके भी दूर थे। भगवान दुर्योधन की सभा में गए पर जाकर के भी एक प्रकार से दुर्योधन का प्रेम नहीं, कर्ण का प्रेम नहीं, दुशासन का प्रेम नहीं, शकुनी का प्रेम नहीं, तो उनके पास में रह करके भी भगवान लाखों हाथ दूर थे उनसे। और समझो कि भगवान जब एक वहां गए कैरवों की सभा में तो पांडव बहुत दूर थे, किंतु उनका प्रेम था तो इस वास्ते में दूर नहीं थे। भगवान ने खुद कहा वहां सभा के बीच के मां कि दुर्योधन क्या तुम ऐसा समझ लिया कि मैं अकेला हूं और मुझको तुम कैद करने के लिए तैयार हो गए? अरे हमारे को कौन कैद कर सकता है, सब पांडव हमारे भीतर में प्रवेश है, सब यादव हमारे मां है, पांडव हमारे मां, और सब ब्रह्मांड हमारे भीतर में, देवता सब हमारे भीतर में। इस बाप के भगवान हंसे और आपका समझो कि विश्व रूप दिख रहा है, सारा ब्रह्मांड भगवान के भीतर में दिखने लगा, अंगुष्ठ प्रमाण समझो कि सब देवता, अंगुष्ठ प्रमाण सब मनुष्य दिखने लगे। जिनकी श्रद्धा नहीं थी, प्रेम नहीं था, वे तो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, और जिनका प्रेम था, श्रद्धा थी, वह हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। ये बात एक युक्ति संगत है और शास्त्र संगत है कि जिनका परस्पर में प्रेम है वो दूर रहते हुए भी नजदीक है, और जिनका प्रेम नहीं है वो पास रह करके भी दूर है। तो अपने तो भगवान से खूब प्रेम करना चाहिए, भगवान को बुलाना चाहिए, और बुला करके उससे फिर मिलना चाहिए। तो अपने आह्वान करो उसका, नारायण 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 यण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 आनंदमय। बस माने पुकारने से मानो भगवान आ गए और भगवान से एकदम अपने तो अपने देख रहे हैं भगवान का दर्शन हो रहे मन से थी मन से भगवान के स्वरूप को मानो एकदम प्रत्यक्ष की जो अपने देख रहे भगवान का समझो कि नारायण का वो स्वरूप शंख सगर गदा पद्म सहित भगवान का स्वरूप एक समझो कि 5.5 फुट लंबा मनुष्य के जितना लंबा और महान प्रकाश स्वरूप एकदम देदीप्यमान जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का जो स्वरूप है उससे भी और अधिक प्रकाश और उससे बढ़कर शांति उससे बढ़कर समता उससे बढ़कर शीतलता और महान एक समझो कि आनंद घन ऐसा भगवान का समझो कि दिव्य स्वरूप सगुण साकार सारा शरीर एकदम चमक रहा है जिनके चरण जो है बड़े सुंदर कोमल और बहुत ही उत्तम ऐसे उनके गिरिए माने दोनों पिंडी और दोनों अपने गोडे और जंघाए और पीताम्बर परे हुए और उस पीताम्बर के भीतर सारा शरीर चमकता है एक तो रोशनी के कारण से और एक वस्त्र झीणा इस कारण से और समझो कि जिनकी कमर खूब पतली है नाभि गंभीर है और समझो कि भगवान चतुर्भुज रूप से सामने मानो विराजमान हो रहे हैं नीचे की दोनों भुजा में गदा पद्म ऊपर की दोनों भुजा में शंख चक्र चारों हाथों में अंगूठी और बाजूबंद पहरे हुए और हाथ बड़े कोमल ऊपर से मोटे नीचे से पतले चूरी अवतार और समझो कि इतने एक प्रकार से आकर्षण करने वाले कि कहीं भगवान के शरीर को छू लिया जावे तो शरीर के वहां समझो कि आनंद की लहरें उठने लगे जैसे समुद्र के वहां जल की लहरें उठती हो शरीर के वहां आनंद की लहरें उठे और बार बार एक प्रकार से भगवान के मानो चरणों को स्पर्श कर रहे हैं हाथों को स्पर्श कर रहे हैं भगवान के शरीर को स्पर्श कर रहे हैं और भगवान भी हमारे को स्पर्श कर रहे हैं तो कितना आनंद उस समय के बीच में और कैसी शांति अलौकिक शांति और प्रसन्नता और बार बार एक प्रकार से भगवान को देख रहे हैं भगवान का जो अपने गड़ा सुंदर ठोड़ी सुंदर वस्त्र जो है तो समझो कि आपने मणि के माफक चमकते हैं दांतों की पंक्ति मानो मोतियों की पंक्ति और नासिका सुंदर गाल जो एकदम चमक रहे हैं खूब एक प्रकार से सुंदर और इसी प्रकार से भगवान के दोनों कान और कानों में रत्न जड़ित मकराकृत कुंडल और जिनकी आभा गालों पर पड़ती है और नेत्र दोनों खिले हुए जैसे कोई कमल के पुष्प खिले हुए हो या गुलाब के पुष्प खिले हुए हो और वो एक तक देख रहे हैं पलक भी नहीं मारते ललाट एकदम चमकता है और समझो कि शीश के ऊपर वो श्रीधारी तिलक मस्तक के ऊपर वे काले रंग के केस गुड़ा गुड़े हुए और उसके ऊपर समझो कि रतन जड़ित है सो मुकुट भगवान के चारों तरफ मान प्रकाश की किरण से खिली हुई और महान चारों तरफ रोशनी हो रही और भगवान मानो हमारी तरफ देखते हैं हम भगवान की तरफ देखते हैं भगवान आकर्षण कर रहे हैं और मानो इतना उसका आकर्षण कि हम उसको देखे बिना रह ही नहीं सकते और देखने से भगवान के भीतर में जो गुण है सो नेत्रों के द्वारा विकसित होकर के हमारे नेत्रों में प्रवेश करके हमारे भीतर में सब एक प्रकार से समझो कि सारे गुण प्रवेश हो रहे हैं और भगवान हमारे को देख रहे हैं हमारे ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं उस दृष्टिपात से थी समझो कि अपना प्रभाव डाल रहे हैं जिससे थी हमारा सारा शरीर एकदम मुग्ध हो गया और सारे शरीर के वहां प्रसन्नता शांति रोमांच आनंद की कोई सीमा नहीं बस ऐसा कि देखते ही रहो भगवान भगवान हमको देखते रहे और हम भगवान को देखते रहे यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि शतमेव न प्रणश्यति भगवान कहते हैं जो मुझको सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है उससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता और मैं मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता वो मुझको देखता रहता मैं उसको देखता रहता।